इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मंसूर अली खान, इन्हीं से जो है वो सवालात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी थैंक यू सो मच।
मंसूर, ये बताएगा, इसी सेटअप की दो अहम शख्सियात हैं, एक तरफ राणा सनाउल्लाह साहब हैं जो हुकूमत को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, नून लीग के जो क्लोज सर्कल है उसका जो है वो हिस्सा है, वो कहते हैं कि इमरान खान को दो दफा डील जो है वो दी गई, उन्होंने जो है वो मना कर दिया, वो डील नहीं ले रहे। उनके जवाब में अब फैसल वाडा जो है वो सामने आ गए हैं, जो कि इदारों के मौकफ देने के लिए जो है वो ज्यादातर जाने जाते हैं, वो कहते हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, अगर डील होती और वो सोचे वो मान लेते तो आपका क्या होता। तो उन्होंने तो बिल्कुल राइट अवे जो है वो इसको मना कर दिया है। तो आखिर चल क्या रहा है, किसकी बात में वजन है आपके ख्याल में?
देखिए, मेरे ख्याल में दोनों साइड जो है वो अपने अपने जो ऑडियंस है ना उसको केटर कर रही है। राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो माजी के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुजाकरात के हवाले से कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं, मतलब ही वॉज द मैन जो जिनसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग जो है गुफ्तगू शुनीद करते थे। लेकिन फैसल वाडा साहब जो है ऑब्वियसली वो कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि जैसे इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन हो रही है। लेकिन मैं खुद आपको बहुत सी खबरों की तस्दीक कर सकता हूँ, क्योंकि इनमें से एक चीज का एक्चुअली मैं खुद भी पार्ट रहा हूँ, सो मैं एक किस्म गवाह भी हूं इस चीज का कि डील की कोशिशें तो हुई थी, बिल्कुल हुई थी। अब ये डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू लुक एट इट, क्या आप हुकूमत डील देने में इंटरेस्टेड थी या नहीं थी, या इमरान खान साहब डील लेने में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे। बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली दोनों में फर्क कितना था। जिस तरह मिसाल के तौर पर आम अल्फाज में अगर एक गाड़ी बिक रही हो, एक शख्स उसके 25 लाख रुपए जो है वो 25 लाख की गाड़ी है वो उसका 1 करोड़ डिमांड कर रहा हो, तो मार्केट में गाड़ी तो वो सेल करना चाहता है लेकिन वो कीमत बहुत ज्यादा मांग रहा है उसकी, लेकिन उसका उसका बायर भी मौजूद है लेकिन वो 25 लाख रुपए में मौजूद है। सो गाड़ी फॉर सेल जरूर है लेकिन प्राइस के ऊपर निगोशिएट नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड जो है वो अपने अपने ऑडियंस को कैटर करने की खातिर जो है वो ये इंप्रेशन दे रही है कि नहीं डील तो ऑफर ही कोई नहीं हुई, और दूसरी साइड कह रही है जनाब डील करना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में डील दोनों ही साइडें करना चाहती थी लेकिन आपस में प्राइस तय नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये डील हुई नहीं आज तक।
अच्छा, मुझे बताएं, आपने कहा कि एक वाकये के तो जो है वो आप भी गवाह है, आप भी हिस्सा रहे हैं, तो ये कौन सा वाला टाइम है अगर आप बताना चाहें?
ये तकरीबन कोई आज से साल डेढ़ साल, मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो याद नहीं है लेकिन साल डेढ़ साल पहले की बात है। एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं, वो मेरे पास तशरीफ लेकर आए थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आप हमारी नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो कोई बातचीत करवाएं। तो मैंने पहले तो, और मेरे खासतौर पर उन्होंने मुझे मेरे घर पर आके मुझसे मुलाकात की थी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ था उस बात के ऊपर कि आप मेरे पास क्यों आए हैं नवाज शरीफ साहब का, आप अगर आपने करना है आप हुकूमत से डायरेक्टली बात करें। उन्होंने कहा नहीं, हम डायरेक्टली नहीं, हम चाह रहे हैं कि किसी ऐसी शख्सियत के जरिए की जाए जिनके दोनों साइड जो है वो कोई रिस्पेक्ट करती हूँ, बात सुन लें। मैंने कहा जी मैं नवाज शरीफ साहब तक तो एक्सेस नहीं है, हाल बता उनके करीबी जो चंद सियासतदान हैं मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, अगर आप कहते हैं तो मैं उन तक आपका पैगाम पहुंचा देता हूं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप बेशक पहुंचा दीजिए। उन्होंने जो मुझे रिक्वेस्ट की थी वो ये थी कि जी आप हुकूमती साइड से जो है वो अगर वो चाहते हैं कोई कोई खामोशी हो जाए, चीजें किसी तरह रिजॉल्व हो जाए, तो मैं ये किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं, मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए भी तैयार हूं। मेरी आप इमरान खान साहब से सिर्फ वन ऑन वन एक मुलाकात करवा दें जेल के अंदर, मैं चीजों को गारंटी करता हूं कि मैं चीजों को रिजॉल्व कर दूंगा। तो मैंने कहा आर यू श्योर, मैं ये इस किस्म की बात लेके चला जाऊं? तो उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल चले जाएं। उसके बाद मैं मुस्तफी नून के उन सीनियर रहनुमा से जो लाहौर में रिहाइश पजीर है, मैं उनके घर गया था और मैंने उनसे जाके ये पैगाम जो उन तक पहुंचाया था। लेकिन उस शख्सियत ने इस बात के ऊपर जो है वो इसरार किया था कि देखिए यहां तक पहुंचने के लिए कि हम इस चीज को कंसिडर भी करें चंद टी ओ आर जो है पहले डिसाइड करने पड़ेंगे, मिसाल के तौर पर ये जो लफ्जी गोलाबारी होती है सोशल मीडिया के ऊपर इसको बंद करवाएं और आपको थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाना पड़ेगा, जब तक ये चीजें नहीं होंगी हम इस चीज को जो है कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा आप फिलहाल मेरी तरफ से इस चीज को ना ही समझिए, ये ना ही है, जब तक हमें कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सीबीएम नजर नहीं आते तब तक हम मजीद कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो मैंने उस शख्सियत को वो पैगाम जो है उसी तरह पहुंचा दिया था, मैंने कहा जी वो फिलहाल ये बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब तक ये चीजें जो है वो रिजॉल्व नहीं होती, वो ये कह रहे थे कि नहीं पहले आप मेरी मुलाकात करवाएं, आप जब मेरी मुलाकात करवा देंगे तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि चीजें जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। सो इट वॉज अ नॉन स्टार्टर, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये पैगाम रसानी मेरे जरिए हुई थी तो इसलिए मुझे पता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जुड़ी वो शख्सियत जो है वो एक्चुअली इस चीज को रिजॉल्व जरूर करना चाहती थी।
तो ये टाइमलाइन, इफ आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई दिस, ये टाइमलाइन क्योंकि एक तो वो इंसिडेंट है ना जब इन्होंने फिर प्रोटेस्ट के लिए जो है वो इस्लामाबाद आ गए, रेड जोन में आ गए और फिर कहा जा रहा था उस वक्त काफी जो है वो कोशिश हो रही थी, तो ये उसके आसपास की बात है या नहीं?
नहीं, ये उसके उसके आसपास की बात नहीं है, ये उसके बहुत बाद की बात
है। मतलब
उस वक्त टेम्परेचर्स अच्छा। बहुत ज्यादा हाई हो चुके हुए थे, ये सारा धरना शरना वो जो उन्होंने अटेम्प्ट इस्लामाबाद की थी वो सब कुछ हो चुका था, ये उसके बहुत बाद की बात है। तो लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेक थ्रू हो नहीं सका, लेकिन अगर कोई भी साइड अगर ये कहे कि जनाब ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं हुई या ऐसी कोई बातचीत हुई, ये तो सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसमें मैं खुद था, लेकिन इसके अलावा भी अमेरिका से भी एक तनवीर साहब आए थे, उनकी भी मुलाकातें हुई हैं जेल में जाके, वो तो ऑन द रिकॉर्ड मेरे इंटरव्यू के अंदर भी ये बात को कह चुके हैं कि हाँ जी मेरी मुलाकात हुई थी और मेरी मुलाकात को फैसिलिटेट अलीमा खान साहब ने करवाया था। सो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि ऐसी कोई बातचीत ही कभी नहीं हुई, बातचीत हुई है लेकिन डील हो नहीं सकी।
जी मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा तफसील से सारा बैकग्राउंड बताया। मतलब नो ऑफेंसेस, आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, आपकी अपनी एक स्टैंडिंग है, नाम है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप एक बाकायदा एक प्रॉपर इससे ऊपर हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है। तो हमारे यहाँ ये भी समझा जाता है कि ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का काम नहीं होता कि वो दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू करवाए, मुजाकरात करवाए, मैसेजिंग करवाए, इट्स नॉट ऑफ आवर बिजनेस। आप इस ये फिलासफी पे जो हमें सिखाई गई थी, मैं अपनी बात चले कर लेता हूँ, डू यू बिलीव इन इट के ये कि आप उनको मना कर देते भाई साहब ये नवाज शरीफ साहब के फलां बंदे का नंबर है, आप उनसे खुद बात करें, हम तो जर्नलिस्ट हैं क्योंकि हमने सब पे बात करनी है तो लिहाजा मैं इसका हिस्सा नहीं बनता, या आप समझते हैं कि नहीं जर्नलिस्ट को पोलिटिकली भी थोड़ा सा अपना एक्टिव रोल अदा करना चाहिए?
मेरे ख्याल में क्लास्टर साहब उसमें एज सच मेरा ख्याल में जो मैंने एक्चुअली उसके अंदर पॉइंट ये देखा था कि अगर इसकी वजह से पाकिस्तान के इतने बड़े इश्यूज अगर रिजॉल्व हो सकते हैं, डेमोक्रेसी जो है वो अपनी जगह बना लेती है, चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, तो मेरा ख्याल में उसमें कोई मुश्किल बात, मैं कोई यहाँ पे किसी की सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहा था, मैं कोई किसी के लिए टिकटें नहीं लेके दे रहा था जो आमतौर पर सियासतदान वगैरह ये काम करते हैं, मेरा ऐसे कोई काम नहीं था, मेरा काम सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के लिए अगर ये चीज बेहतर हो सकती है, दोनों साइड अगर किसी तरह मुतमिन हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। और दूसरी बात यह कि जिन शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं, मेरे उनके अपने पर्सनल रिलेशन भी बहुत अच्छे थे जिसकी वजह से उन्होंने आई थिंक ही टुक द लिबर्टी एंड ही टॉक्ड अबाउट दिस, और जिस शख्सियत के पास मैं गया जारी बात है आपको भी और मुझे भी इतने साल हो चुके हैं, तो आपके एक पर्सनल रिलेशंस भी लोगों के साथ डेवलप हो जाते हैं, तो ये बेसिकली सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में था, और मेरे ख्याल में ये पूरी चीज शायद 24 से 48 घंटे के अंदर ही खत्म होगी, इससे आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सकी।
राइट, अच्छा सर, आपने अभी ये बात हो रही थी सारे मुजाकरात की जो आपने बताई भी और भी लोग कहते रहे, आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था एक स्टेज पे, उन्होंने कहा भाई साहब ये जो ये इमरान खान साहब वाले मुजाकरात का मसला है, रिहाई का वट एवर, ये मेरे पे स्केल से भी ऊपर का काम हो गया, ये यहाँ पे नवाज शरीफ ये सारे इमरान खान साहब जाने, फौज जाने, कोई तीसरा बंदा इस मसले को हल नहीं कर सकता। आपकी क्या रीडिंग है, कोई थर्ड पार्टी कर सकती है या खान साहब और फील्ड मार्शल ही बैठ के मसला हल कर सकते हैं जिनकी मुलाकात का कोई चांस नहीं लगता कोई ब्रेक थ्रू का?
नहीं, मेरे ख्याल में मुलाकात तो नहीं हो सकती, वो तो मेरे ख्याल में बचकाना किस्म की बात होगी अगर हम ये कहें कि दोनों अफराद जो है वन टू वन बैठेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बीच में मीडिएटर्स होते हैं। अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी और उसके बाद इलेक्शंस के ऊपर मुजाकरात हुए थे, इमरान खान साहब खुद नहीं बैठे थे, दूसरी साइड पर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ नहीं बैठे थे, दोनों साइड ने अपने अपने डेलीगेशन जो है वो अनाउंस किए थे और उनके आपस में मुजाकरात हुए थे जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये लोग सब उसमें शामिल थे। सो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे भी अगर चीजें रिजोल्व होना चाहें तो हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, बीच में कई ऐसे कॉमन मेरे ख्याल में अफराद मौजूद हैं जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डिस्टेंस इतना ज्यादा है, आपस में इख्तलाफात इतने ज्यादा है, तो इसकी वजह से मुश्किल लगता है। लेकिन मैं रिसेंटली एक्चुअली मैंने अपने वीलॉग में भी एक्चुअली इसका जिक्र किया था कि रिसेंटली एक बड़ी आम सिक्योरिटी जराए के एक सीनियर ऑफिसर से हमारी मुलाकात हुई थी, मैं अकेला नहीं था, मेरे अलावा और बड़े जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे। मेरे ख्याल में जिस दिन से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है तब से लेकर इस मुलाकात तक मैंने इतनी नर्म टोन जो है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए जो अल्फाज का चुनाव था मैंने इतना सॉफ्ट आज तक पहले कभी नहीं देखा था। इवन उस मुलाकात के बाद हम जो वी वर अबाउट 40-50 जर्नलिस्ट और हम जब बाहर आए थे तो हमें आपस में जो बातचीत कर रहे थे तो हम सभी इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमने इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज जो है वो आज तक नहीं देखी। सो आई डोंट नो अभी भी पर्दे के पीछे क्या कुछ चीजें की बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, और वो कोई एक सीक्वेंस नहीं था, बहुत से सवाल थे जिसमें हमें बार बार ये महसूस हुआ, चाहे वो 9 मई का डिस्कशन हो, चाहे वो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट हो, चाहे वो माफी मांगने की बात हो, बहुत सी चीजों के ऊपर जो है ना वो हमें एक सॉफ्टनेस नजर आ रही थी। तो क्या पीछे बातचीत हो रही है नहीं हो रही,
आपने ट्विटर की बात की
इसके बारे में आपको पता लगेगा ना मुझे पता लगेगा,
आपने ट्विटर की बात की तो परसों जो उनका ट्वीट आया इमरान खान साहब के हैंडल से यकीनी तौर पर आपने देखा होगा, उसके बाद भी आपको लगता है कि टोन दोनों साइड से कोई सॉफ्ट या कोई बातचीत हो रही थी? अगर हो भी रही थी उस ट्वीट के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बातचीत का चांस बच गया होगा जो कल परसों आया है।
اگریڈ, آپ صحیح صحیح فرما رہے ہیں, اور ہم لوگ بھی ایکچولی اسی بات کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر رہے تھے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بلکہ ہم نے ایکچولی فوکس یہ رکھا ہوا تھا کہ کیا علیمہ خان صاحبہ کی یا بہنوں میں سے کسی کی جب ملاقات اگلی اگر ہوتی ہے, اگر ہو جاتی ہے, کیونکہ بہت سے جرنلسٹ یہ بات کہہ رہے تھے کہ شاید ان کے لیے ملاقات کا کوئی ماحول بن رہا ہے, تو اگر وہ ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ باہر آتے ہیں تو اس کے بعد میڈیا سے کیا گفتگو کرتے ہیں یا کیا نیریٹو دیتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی, سختی جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی. سو مجھے لگتا ہے کہ اگلی اگر کبھی اس سیکیورٹی ذرائع سے کبھی کوئی ملاقات ہوئی تو وہی ٹون اور وہی الفاظ جو ہے شاید ہو سکتا ہے کہ دوبارہ واپس آ جائے.
اچھا آپ کو لگتا ہے کہ تین سال بعد آپ اور میں یہ اسی طرح کا پروگرام کر رہے ہوں گے, یہ کوشچننگ ہو رہی ہوگی کہ ملاقاتیں ہونی ہیں نہیں ہونی, ڈیل ہونی ہے یا نہیں ہونی, حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جان بوجھ کے کچھ عرصے کے بعد, تین چھ مہینے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ گروپ مل رہا ہے, لوگ مل رہے ہیں اور الٹیمیٹلی بیک ٹو اسکوائر ون. آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جب تک یہ موجودہ سیٹ اپ ہے, فیلڈ مارشل ہیں, پرائم منسٹرز ہیں, تو خان صاحب کے لیے کوئی سپیس نہیں بنے, جس کا اشارہ آج فیصل واٹر صاحب نے بڑا کلیئر دیا ہے کہ جناب کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور فوج نے کوئی ان کو ڈیل کی آفر نہیں کی.
راسٹر صاحب کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی تو 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر جائے گا, لیکن آپ دیکھ لیجئے میں اور آپ اب 2.5 سال کے بعد بھی آج یہیں پہ ہم بیٹھے ہیں اور یہی ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو جن سی بی ایمز کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا, کانفرنس بلڈنگ میجرز کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا, وہ ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئے ہیں. جہاں پہ آپ کو لگے آپ ذہن میں رکھیے گا, اس کا سب سے پرائم ایگزامپل جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون ہے. مریم نواز صاحبہ کا اگر آپ کو یاد ہو, ایک سال تک ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا تقریباً خاموش ہو گیا تھا, کوئی بات چیت نہیں, کوئی انٹرویوز نہیں, کوئی سخت بیان نہیں, سب کچھ ہو گیا تھا. اس ایک سال لگا تھا اس ساری چیز کو ایکچولی اچیو کرنے میں. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو ابھی تک اس چیز کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے, تو ابھی جو سال پڑا ہوگا یا پتا نہیں کتنا ٹائم لگے گا اس چیز کو قدر ٹھیک کرنے میں. اور ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت نون لیگ نے جتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنایا ہوا تھا یہ اس سے 10 گنا اوپر ہے, مطلب یہ قریب قریب بھی نہیں ہے اس چیز کے جو ان لوگوں نے بنایا تھا. سو اگر تو یہ سلسلہ, یہ گاڑی جو ہے وہ اسی پٹری کے اوپر چلتی رہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد بھی ہم میں اور آپ یہ ڈسکشن کر رہے ہوں کہ جناب علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات جو ہے وہ آج بھی نہیں ہو سکتی.
ناظرین منصور ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے, بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین.
اچھا آپ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں اسلام آباد بھی آپ آتے رہتے ہیں, درمیان میں یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی جو شاہ خرچے ہیں ان پہ خوش نہیں ہے, یہ خبریں آئی تھیں سامنے. ابھی انہوں نے جہاز بھی ایک لے لیا, اس پہ بھی ایک ریئیکشن یہ سامنے آ رہا ہے. پھر آج ہم نے دیکھا فیصل واٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا سخت اٹیک کیا, جو سیم پیج والی ہم سنتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا مجھے تو نظر آیا کہ سیم پیج شاید اس طرح کا نہیں ہے جو آج ان کا انہوں نے عمران خان کی ڈیل کی خبروں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو سنب کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں پہ کریکس جو ہیں پڑ رہے ہیں اور کہیں فیلنگ آ رہی ہے 2-3 سال بعد کہ ساری چیزیں حکومت پنجاب حکومت یا یہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے اور شاید ہماری سپورٹ کا کچھ فائدہ اٹھانے کی یہ بھی کوشش کر رہے ہیں؟
میرے خیال میں کلاسٹر صاحب یہ فرکشن پوائنٹس ضرور ہوتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ اپنی کرکٹ ٹیم اٹھا کے دیکھ لیں, 11 لوگوں کی ٹیم ہے, یہ 11 لوگ بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں, میرے کوئی نہ کوئی آپس میں جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. سو یہاں پہ تو پوری ایک حکومت ہے نا اور ان کے درمیان بہت سے فرکشن پوائنٹس ہوں گے. کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ سویلین سائڈ کہے گی جناب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, کچھ جگہوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کہے گی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, لیکن میں ابھی تک کم از کم ایسا کوئی بڑا فرکشن پوائنٹ میں نہیں دیکھ سکا جس کی وجہ سے بہت بڑی جو ہے وہ کریک آ جائے, جس کی وجہ سے بہت بڑے آپس میں ڈسٹنس.
ایگزامپل
میں صرف دینا چاہوں گا کہ میں ایک بڑی عام شخصیت, سیکورٹی ذرائع کی بڑی عام شخصیت جن کا لاہور سے تعلق ہے, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور جنید صفدر کی جو ہے یہ جو شادی ہوئی تھی اس کے بعد کی یہ سٹنگ ہے, تو وہ شخصیت میرے ساتھ بیٹھ کے ایون اس شادی کے اوپر بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جس طرح کی انہوں نے اس کے اوپر فوٹوگرافی کی اور جتنا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا, اس کی ضرورت نہیں تھی. آخر کیا ضرورت تھی اپنے آپ کو اتنا پروپیگیٹ کرنے کی؟ لیکن آبویسلی وہ صرف ایک ڈسکشن تھی, اس کی وجہ سے ریلیشن شپ کے اوپر کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی فرق پڑا. تو آپس میں کنسرنز ضرور ہوتے ہیں, کئی پریس کانفرنس ایسی ہوئی ہیں جس کے اوپر بھی کنسرنز پائے گئے, لیکن اگر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی اگر میں بات کروں یا جس طرح جنرل فیض کی تعیناتی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے تھے, وہ سچویشن یا ایسا کریک مجھے کم از کم موجودہ سیٹ اپ میں فی الحال نظر نہیں آ رہا.
اچھا ہم دیکھ رہے ہیں بڑی شدید تنقید ہے یہ کہ آج ہی 2-3 خبریں اکٹھے ہیں, ایک طرف یہ خبر ہے کہ پاکستان کے پاس فارن ریزروز کم ہو رہے ہیں, وہ $600 ملین جو ہے اسٹینڈرڈ چارٹر بینک سے لون لیا جا رہا ہے, کمرشل مہنگا لون لیا جا رہا ہے. دوسری سے پہ یہ خبر ہے یہ مریم صاحبہ کی حکومت جو ہے انہوں نے 10 بلین روپیز کا انہوں نے ایک نیا جہاز خریدا ہے, ساتھ میں لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا ہے کہ پوری پی آئی اے جو ہے وہ 10 ارب میں بک گیا, آپ نے ایک جہاز جو ہے 10 ارب کا لے لیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ مریم صاحبہ پہ پہلے بھی جیسے تنقید آتی تھی کہ بہت سارا پیسہ جو ہے شاید وہ کچھ ایسے پروجیکٹس پہ خرچ ہو رہا ہے اپنی پرسنل پروموشن پہ جو کچھ کوارٹر جو ہے خوش نہیں ہے ان سے.
ये तो फैक्ट है। मैं आपको अभी से बता सकता हूँ कि जिसे हमारे यहाँ अक्सर औकात को कहा जाता है ना, सियासतदानों की जो है वो फाइलें बनती रहती हैं, उसमें कागज जो है वो लगते रहते हैं, तो ये उन्हीं कागजों में से आप जरूर ऐड कर लीजिए। और जिस दिन, मैं कई दफा कहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिस दिन मरियम नवाज साहबा के खिलाफ अगर हवा चलना शुरू हुई या जिस दिन ये फैसला हुआ कि चलें जी अब जरा पेज टाइट करने का टाइम आ गया है, तो बहुत से पेज हैं जो टाइट होंगे। ये तो आप सिर्फ चंद चीजें अभी आप बता रहे हैं, जहाज के हवाले से, शाह खर्चों के हवाले से। मैं आपको दो चार और पॉइंट्स बता देता हूँ। मरियम नवाज साहबा के जो फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के फीते काटती हैं जाके, उन फंक्शंस की कॉस्ट क्या है, आपने कभी मेरे ख्याल में शायद पता नहीं नोट किया या नहीं, मतलब वो उसकी तशहीर किस तरह होती है, वो फीते कटते, मतलब फीता अगर आपने काटा है, फीता जो है ना वो मेरे ख्याल में शायद 1000 रुपए में भी कट सकता है अगर सियासतदान ने काटना चाहे, और अगर उसने उस फीते को कटवाने के लिए 1 करोड़ रुपए लगा देना तो 1 करोड़ रुपए भी लग सकता है। तो उनकी इन प्रोजेक्ट्स की तशहीर के लिए जितना पैसा खर्च होता है, इसके ऊपर भी एतराज आ सकता है एक दिन। सीसीटीवी के हवाले से मैं, हो सकता है एक अनपॉपुलर ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूं, लेकिन सीसीटीवी के हवाले से अगर किसी दिन हवा खिलाफ चली तो ये सीसीटीवी का मसला जो है ये बहुत बड़ा बन सकता है। इसके अलावा और बहुत कुछ है, मैं ज्यादा
शहबाज शरीफ साहब पे बना भी था,
लेकिन जिस दिन ये हुआ तो बहुत सी फाइलें खुलेंगी, बहुत से पेज टाइट हो सकते हैं।
आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब इस तरह ये पुलिस ये शूट आउट होते थे, एक्स्ट्रा जुडिशियल वहां पे ये चीजें हुई थी, उन पे केसेस बने हुए हैं, उन पे शहबाज शरीफ साहब पे ये केस मुकदमे बने हुए। अच्छा सर, थोड़ा सा अली अमीन गंडापुर साहब वर्सेज सुहेल अफरीदी साहब, उनको कैसे देखते हैं? अचानक 6 महीने बाद वो पहले कबूतर लड़ा रहे थे, वहां घोड़े कुत्ते शिकार खेल रहे थे अपने इलाके में, अचानक वो आए हैं, इतना बड़ा शो था, वो तो पूरे का पूरा शो चुरा के ले गए हैं और कहीं पर सुहेल अफरीदी साहब नजर नहीं आते, और हर जगह पे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इनके शफात हैं, वो तो उन्होंने पूरे का पूरा एक नया पेंडोरा बॉक्स उन्होंने खोल दिया। हाउ डू यू सी दैट सर?
मैं एक्चुअली मैं अभी आप इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे थे, तो ये जो पिछला जुम्मा गुजरा है तो मैं इस्लामाबाद में था, मैं एक्चुअली मरी से एक शूटिंग करके जो है मैं वापस लाहौर की तरफ जा रहा था, तो मुझे पता लगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस तरह मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धरने दिए हुए, तो मुझे पता लगा कि केपी हाउस में जो है वो सुहेल अफरीदी साहब वहां पे मौजूद है। मैंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक शख्सियत से राबता किया, मैंने कहा जी मैं सुहेल अफरीदी साहब से जो है मैं मिलना चाहता हूँ। मैं वहां पे गया, उन्होंने मुझे एक्सेस दिया, मैं केपी हाउस के अंदर गया, तो ये तकरीबन रात के कोई 11:30-12 बजे का टाइम था, उस वक्त उन्होंने धरने दिए हर जगह। मैं अंदर गया, मेरी सुहेल अफरीदी साहब से मुलाकात हुई और मैंने सुहेल अफरीदी साहब को वहीं पर ऑफर किया, मैंने कहा जी मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, आप मुख्तलिफ जारी बात है अभी आपने इस तहरीक को शुरू किया है, ये एहतजाज वगैरह जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप वो इंटरव्यू दीजिए, आप उसके अंदर सवाल के जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं इस वक्त किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता, आप मुझसे वैसे सवाल जो आप कर लीजिए आप जाकर रिपोर्ट कर लीजिएगा। मैंने कहा जी ठीक है जैसे आप कंफर्टेबल है। उन्होंने मैंने उनसे चंद 20 मिनट की मेरे ख्याल में गुफ्तगू हुई, मेरे चंद सवालों के जवाब दिए, मैंने उसको जो है नोट डाउन कर लिया और बाद में मैंने अपने वीलॉग में जिक्र किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे मैं केपी हाउस से बाहर आया तो अली अमीन गंडापुर साहब बाहर ही बैठे हुए थे, बाहर बैठे हुए थे
गेट के,
तो मैं गंडापुर साहब के गेट के बाहर बैठे हुए थे वो, तो मैं उनके पास गया। अच्छा गंडापुर साहब जब वजीर आला थे तो हमने कई दफा उनको इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की, लेकिन आई डोंट नो उनकी चॉइस थी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया, दैट्स हिज चॉइस, आई रिस्पेक्ट दैट। इस मर्तबा व्हेन आई वेंट टू हिम, या मेरी टीम का एक लड़का एक्चुअली उनके पास गया और उन्होंने कहा जी वो मंसूर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा हाँ बिस्मिल्लाह लाएं इधर कैमरा लाएं। अच्छा मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि भाई इनको जब ये वजीर आला थे तब तो इनको बड़े इश्यूज थे, अब ये मुझे भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने बड़े आराम से 10-11-12 मिनट जो है हमारे साथ ऑन कैमरा बड़े आराम से गुफ्तगू की। उनका वहां पे आना, मैं एक्चुअली ये बात मैं ऑलरेडी अंदर जब अफरीदी साहब के पास था तो पाकिस्तान तरीके साहब के रहनुमा मेरे साथ खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी बड़ी ये खुशगवार हैरत है कि आज गंडापुर साहब गेट के बाहर बैठे हुए हैं, ये तो 4 चांद लग गए, आपको तो लगता था कि सपोर्ट नहीं मिलती और गंडापुर साहब शायद आपके खिलाफ है, तो ये तो बहुत बड़ी सपोर्ट है। उनका जवाब बड़े मजे का था, उन्होंने कहा ये आपके लिए खुशगवार हैरत होगी, हमारे लिए परेशानी का बायस है कि बाहर आके क्यों बैठे। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं ये अगर बाहर आके बैठे हुए ना तो ये हमारे लिए नेक शगुन नहीं है, ये कोई खिचड़ी पक रही है जिससे ये उठ के आए हैं। सो पाकिस्तान तरीके साहब के अपने अंदर भी वहां पे जिसे कहते हैं ना एंटीने खड़े हो जाना, तो उनके भी एंटीने खड़े हो गए, लाल बत्ती जलना शुरू हो गई है कि गंडापुर साहब की जो एक्टिविटी है ना ये कोई ना कोई मानी खेज है, ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगी।
अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, आज अलीमा खान साहब ने कहा मैं फील्ड मार्शल को एक डील ऑफर करती हूँ कि अगर वो खान साहब का इलाज जो है वो वहां से शिफा हॉस्पिटल से करा लें, डॉक्टर हमारी मर्जी के हूँ तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी अपनी गुफ्तगू, मतलब हम तनकीद नहीं करूंगे, ये उन्होंने उनको ट्रॉल करने की कोशिश की है, सीरियस ऑफर की है या लाइट मूड में कहा है सर?
तो मेरे ख्याल में आई थिंक मुझे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो आज बहुत डेस्परेट, काफी ज्यादा ब्रोकन मुझे लग रही थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे थोड़ा सा उनके ऊपर रहम भी आ रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे वो एक बहन है और वो काफी देर से देख रही है कि मेरे भाई के साथ जो कुछ हो रहा है, उनको इलाज मुआवजा जो है सही तरह उनका नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली नाउ शी हैज ऑल्सो ऑफर्ड दिस। اور میں اس پہ حیران نہیں ہوں ایکچولی, کیونکہ مجھے جو رپورٹس اندر سے آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ فرسٹریشن اس معاملے میں کافی بڑھتی جا رہی ہے اور الٹیمیٹلی یہ ایک دو قدم ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. لیکن مجھے اب اس کے اگلے قدم کا جو خطرہ ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ اگر اس بارے کے اس معاملے کے اوپر بھی اب کوئی معاملہ طے نہ ہوئے, جو انہوں نے ایک قسم کی ڈیل آفر کی ہے, اگر یہ نہ ہوئے تو میرا خیال میں پھر ان کی زبان سے جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت بیانات جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر ایسا ہوا تو علیمہ خان صاحبہ کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے میرے خیال میں مشکلات پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے.
بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ,
تھینک یو منصور. جوائن کرنے کے لیے منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے.